الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. اس سے پہلے کہ ہم سیرت کلاس کو کنٹینیو کریں، پچھلی کلاس میں جہاں چھوڑا تھا، ایک دل میں بات آئی تھی نجیب بھائی کے لیکچر کو سن کر کے، ابھی جو آخری کے چند باتیں سنی، تو دل چاہ رہا ہے کہ وہ بات آپ لوگوں کے سامنے پہلے کر لی جائے. انہوں نے ایک جملہ بیان کیا، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جو منسوب ہے، جو انہوں نے فرمایا اور جو آج بھی علماء کرام فرماتے ہیں. وہ کیا جملہ تھا؟ بڑا عجیب جملہ. کسی کو یاد؟ ہاں، انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمارے جنازے، ہمارے فیونرل پروسیشنز جو ہوتی ہیں نا، جنازے جب ڈیڈ باڈی اٹھا کر کے کندھوں کے اوپر لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، اس کو جنازہ کہتے ہیں. تو ہمارے جنازے ہمارے حق اور باطل ہونے کا فیصلہ فرمائیں گے کہ ہم حق پر تھے یا جو ہمارے مخالفین تھے، جو ہمارے دشمن تھے، وہ حق پر تھے. تو اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے. کیا مطلب جنازے فیصلہ کریں گے؟ جنازے میں سے کوئی آواز آئے گی کہ میں حق پر تھا؟ ڈیڈ باڈی میں سے آواز آتی ہے کہ فیصلہ ہوگا؟ کیسے فیصلہ ہوتا ہے جنازے سے؟ نہیں، قبر کے اندر جو چیز پڑی ہوتی ہے نا، اس کو جنازہ نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں میت. تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری میتیں فیصلہ کریں گی کہ ہم حق پر تھے کہ ہم باطل پر. قبر تو کبھی کبھی کسی کی کھلتی ہے، ہمیشہ کسی کی کھلتی ہے. جنازے میں لوگوں کی تعداد، رائٹ، کہ جنازے کے اوپر جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے اتنے لوگ آتے ہیں، اتنے لوگ آتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان سے محبت کرنے والے کتنے لوگ تھے. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جی یہ لوگ جو ہے نا، وہ کتنے زیادہ اللہ کے مقرب بندے تھے. مور پیپل کمنگ ٹو دا فیونرل پروسیشن. اچھا، اب اس کے اوپر جو سوال پیدا ہوتا ہے نا ذہن کے اندر، وہ یہ ہے کہ جنازے میں زیادہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صحیح لوگ تھے اور جو دشمن تھے یا جو گورنمنٹ والے، جیسے خلیفہ نے ان کو کوڑے مارے، دوسرے خلیفہ نے بھی کوڑے مروائے یا قید میں رکھا، تو اب نمبرز ڈیسائیڈ کہ جی یہ اچھے ہیں اور وہ برے ہیں. تو کیا ایسا صحیح ہے؟ کیا زیادہ لوگ اگر ایک طرف ہو جائیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جی یہ ٹھیک ہے؟ تو ایسا آپ نے کبھی دیکھا اپنے اسکول کے اندر کہ کوئی نیک کام کر رہا ہوتا ہے، اچھے لوگ ہوتے ہیں جو، تو زیادہ لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا کم لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ جو نیکی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اس کو ہمیشہ زیادہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں یا کم لوگ سپورٹ کرتے ہیں؟ ہم نے تو یہ دیکھا، زیادہ لوگ تو سپورٹ نہیں کرتے، کم لوگ سپورٹ کرتے ہیں نیک لوگوں کو. زیادہ لوگ تو ہمیشہ گناہ کے کاموں کو سپورٹ کرتے ہیں، میجورٹی جو ہوتی ہے نا. حتیٰ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میجورٹی کو فالو کرو گے تو تم تو گمراہ ہو جاؤ گے، تم تو راستے سے ہٹ جاؤ گے. تو زیادہ لوگ تو غلط راستے کے اوپر ہوتے ہیں، کم لوگ نیک راستے کے اوپر ہوتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ سے ایسے ہی رہے. تو پھر یہ زیادہ لوگوں کا جنازے میں آ جانا کیسے ہو جاتا ہے ابھی نیک لوگوں کے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی اس کا جواب دے. سوچیں یہ کیسے ہوتا ہے کہ جنازے میں زیادہ لوگوں کا آنا ان کے سچ ہونے کی علامت ہوتا ہے اور حکومت کے یا دشمنوں کے جھوٹے ہونے کی علامت ہوتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ جنازے کو دیکھنے کے لیے آتے، تماشا دیکھنے کے لیے، اس وجہ سے نہیں. یہ تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ دل میں محبت ڈالتے ہیں، لیکن جو پاپ سٹارز ہوتے ہیں ان کے دل، ان کے لیے تو دلوں میں زیادہ محبت ہوتی ہے. thousands of people come to their concerts, right? Concerts जो होते हैं ना, music concerts जो होते हैं, उनके अंदर हजारों लोग आते हैं. फिर उसके बाद millions of people, लाखों लोग जो हैं, वो उनके concerts को TV पे देखते हैं, right? Live concerts TV पर आते हैं, millions of people watch them, and then further millions जो हैं ना, वो recordings को देखते हैं, YouTube के ऊपर और दूसरे जगह पर, right? तो ज़्यादा मोहब्बत तो concert वो pop stars की हुई ना. जो जो हॉलीवुड के एक्टर्स होते हैं, जो बॉलीवुड के एक्टर्स होते हैं, इंडिया के इंडियन फिल्म हीरोज, तो ज्यादा मोहब्बत तो उनकी हुई, लोग तो उनको ज्यादा सुनते हैं, उनको पसंद करते हैं. तो ये कौन क्या बात हुई कि जी नेक लोगों के जनाजों से पता लगता है कि वो बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने, ठीक है. But no one remembers them when they die. यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिया था ये girls की तरफ से भी, और because they want to make the other people think that they care. ये तो मुझे समझ में नहीं आया कि आपने क्या कहा. अवाम की अकीदत अल्लाह वालों के साथ. जी, जो इन दो स्टूडेंट्स ने जवाब दिया, एक यहाँ पर और एक वहां और girls की क्लास में, कि ये जो पॉप स्टार से और फिल्म स्टार से और स्पोर्ट्स स्टार से जो मोहब्बत होती है ना, ये मोहब्बत जो होती है ये जिंदगी में होती है, ये दुनिया की हद तक होती है, जब तक उनके पास ग्लोरी होती है, राइट. जब तक उनके पास जो है ना, वो एक फिल्म की बड़ी मशहूरी होती है, या वो स्टार्स मशहूर होते हैं, या स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं, तो उसकी वजह से इनकी मोहब्बत होती है. और ये मोहब्बत जो होती है वो उनकी ग्लोरी के साथ साथ जो है ना, वो मर जाती है, खत्म हो जाती है. जैसे जैसे वो बूढ़े हो जाते हैं, उनके पास से थोड़े बहुत लोग उनको फिर भी याद करते हैं, हाँ जी हमने उनकी फिल्म देखी थी, हमने उनका गाना सुना था, ठीक है. लेकिन एक तो ये खत्म हो जाती है, टाई डाउन हो जाती है, और दूसरी बात ये होती है कि ये जो मोहब्बत होती है ना, ये हकीकी मोहब्बत नहीं होती, ये तो लस्ट होता है, ये तो डिजायर्स होती हैं खाली, ये हकीकी मोहब्बत नहीं होती. अल्लाह वालों के साथ, नेक लोगों के साथ जो लोगों की मोहब्बत होती है ना, ये हकीकी मोहब्बत होती है जो अल्लाह ने लोगों के दिलों में इनके लिए पैदा की हुई होती है, और ये जिंदगी खत्म होने के बाद खत्म नहीं होती, मरने के बाद ये मोहब्बत खत्म नहीं होती, बल्कि मरने के बाद ये मोहब्बत और ज्यादा बढ़ जाती है, और ज्यादा बढ़ जाती है, और ज्यादा लोग इनसे मोहब्बत करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है. तो जनाजे में ज्यादा लोगों का आना इस बात की दलील है कि भाई अब तो ये शख्स मर गया ना, अब तो इसका दुनिया के अंदर काम खत्म हो गया, अब तो ये किसी को बजाहिर अब तो किसी को बेनिफिट नहीं पहुंचा सकता, है ना. तो लोग उससे उसकी मौत के बाद मोहब्बत करते हैं, ठीक है ना. ये मतलब है इसका कि हमारे जनाजे फैसला करेंगे कि हम हक पर थे कि हमारे दुश्मन हक पर थे, ठीक है ना. आप नेक लोगों के उलमा के जनाजे देखें. अभी 2 साल लॉकडाउन रहा है, कंप्लीट लॉकडाउन ना, कर्फ्यूज लगे हुए हैं और सब, राइट, ठीक है. वैसे तो मिलियंस लोगों को मर जाना था, मरे नहीं वैसे, राइट. अभी भी आज खबर आई है कि 700,000 पीपल मोर विल डाई, ठीक है ना. आज खबर लग गई है 700,000 विल डाई, हाउ मेनी डाइड पिछले 2 साल के अंदर. मिलियंस तो खैर डाई नहीं हुए, बाकी जो मरे वो भी पता नहीं है मरे कैसे मरे, ठीक है. लेकिन वी बिलीव, वी आर बिलीवर्स ऑन द मीडिया, ठीक है. बहरहाल तो इतने लोगों की खबर आती रहती थी कि जी ये हो गया, ये हो गया, लेकिन बहुत सारे उलमा का इंतकाल हुआ है पाकिस्तान के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी, ठीक है. और आप उन उनके जनाजों के वीडियोस देखें जा करके, उनकी पिक्चर्स देखें जा करके, एवरी जनाजा हैड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल इस तरह से खड़े हुए, नो सोशल डिस्टेंसिंग, नो मास्क, नो सोशल डिस्टेंसिंग, ऐसे चिपक करके लोग खड़े हुए हैं और भरे हुए हैं सारे के सारे, राइट. सड़कें भरी हुई, सड़कें भरी हुई हैं, ग्राउंड्स भरे हुए हैं, और बड़ी बड़ी एरिया में, है ना. तो ये जनाजे थे डिस्पाइट ऑल ऑफ द फियर कि जी मर जाओगे, मर जाओगे, मर जाओगे कोरोना की वजह से, नो वन केयर्ड. और अल्हम्दुलिल्लाह कोई मरा भी नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ कि उसकी वजह से जो है ना वो मिलियंस ऑफ डेथ्स इंक्रीज होनी शुरू हो गई, हुआ भी कुछ नहीं. और जनाजे जो है वो हर जनाजा जो था वो इसी तरीके से पैक्ड हो फुल होता था, ठीक है. तो ये अल्लाह ताला की तरफ से फ्यूनरल जुनैद जमशेद, तो पैंडेमिक से पहले की बात है, लेकिन ये तो उलमा की बात है जिसके अंदर के जुनैद जमशेद के जनाजा तो बहुत छोटा जनाजा था, जुनैद जमशेद के जनाजा बहुत छोटा जनाजा था, इट वॉज नथिंग कम्पेयर टू द जनाजा ऑफ द मशायख। ठीक है, आपने देखा होगा जो है जमशेद का जनाजा, क्योंकि वो मशहूर ज्यादा थे ना आप लोगों, इस वजह से क्योंकि उनका गाना छाना बड़ा मशहूर होता था, फिर नातें बहुत मशहूर हो गई। तो हम लोगों को जुनैद जमशेद का ज्यादा पता है, रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला की मगफरत हो, लेकिन उलमा का मामला तो उनसे 10 times या 100 times ज्यादा होता है। ठीक है, तो सीरत की क्लास हम शुरू करते हैं। हम सीरत की क्लास के अंदर आखिरी दफा ये डिस्कस कर रहे थे कि नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा से जब आप को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिली, थोड़े से लोग खाली मुसलमान हुए, तो आप ने फिर बाहर से आने वाले ट्राइब्स के अंदर दीन की तबलीग का काम शुरू किया। आप पहले भी करते रहते थे, ऐसा नहीं था कि बाहर वालों में बिल्कुल पहले बात नहीं करते थे, पहले भी करते थे, लेकिन अब जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी पहले के मुकाबले में। और खसूसा जो हज के ऊपर लोग आते थे तो मीना के अंदर आपको पता है कैंप्स लगते हैं, टेंट्स लगते हैं मीना के अंदर, तो वहां पर लोग आकर के क्याम करते थे। आप फिर कबीलों के टेंट्स के अंदर जाया करते थे और वहां पर जाकर के बातें किया करते थे दीन के बारे में। तो सब ने इनकार कर दिया था कि नहीं नहीं हम नहीं मानते आपका, और कुछ ने तो यहां तक कहा कि अच्छा ये बताएं कि अगर हम आपकी बात मान लेंगे ना, तो फिर जब आप कह रहे ना कि जी अल्लाह आपकी मदद करेगा, हम आपकी मदद करें तो अल्लाह भी मदद करेगा, तो फिर आप जो है वो पूरे अरब को हरा देंगे और फिर आप अरब के बादशाह बन जाएंगे। ठीक है, तो फिर आप हमें ये बताएं कि जब आपको अल्लाह ताला फतह अता फरमा देगा ना पूरे अरब के ऊपर, तो फिर आप हमें हुकूमत देंगे, आप हमें जो है वो अरब की बादशाहत देंगे। तो नबी अलैहि सलाम ने क्या जवाब दिया, बादशाह तो अल्लाह ताला की, मैं किसी को बादशाह नहीं दे सकता, अल्लाह ताला जिसको चाहेंगे उनको बादशाह बनाएंगे। ठीक है, तो जब इन लोगों ने ये सुना ना, उन्होंने कहा कि अच्छा तो हम तो आपकी खातिर जो है ना वो सारे अरब के साथ लड़ाई लड़ें और अपने आप को रिस्क में डालें कि जी अरब की दुश्मनी लें, और जब अल्लाह ताला आपको फतह अता फरमा दें हमारी मदद की वजह से, तो उस वक्त आप कहें कि नहीं नहीं मैं तो आपको बादशाह नहीं दूंगा, मैं तो जो अल्लाह ताला कहेंगे वैसा करूंगा, नहीं नहीं ये तो सही ठीक नहीं है। तो ये भी आर्ग्यूमेंट कुछ लोगों ने पेश किया कि अच्छा ठीक है फिर तो हम आपकी मदद नहीं करते अगर आप कह रहे हैं कि जी हमें बादशाह नहीं बनाएंगे जीतने के बाद। ठीक है, तो नबी अलैहि सलाम ने इस बात के ऊपर कोई बात चेंज नहीं करी, बस ये कि हाँ भैया बादशाह अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला जिसको देगा वही बादशाह बनेगा, मैं नहीं किसी को बादशाह बना सकता। बहरहाल फिर इसी तरीके से ना एक और कबीला था जो कि मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा आया, यहाँ पर हज में आया। ठीक है, तो ये जो कबीला था ना ये था कबीला औस। ठीक है, अभी मदीना मुनव्वरा के बारे में और बात होगी तो आपको बताएंगे कि मदीना मुनव्वरा में दो मेजर कबीले होते थे अरबों के ट्राइब्स। ठीक है, एक का नाम था औस, एक का नाम था खजरज। ठीक है, तो अच्छा चलें पहले इनके बारे में आपको पहले बता देते हैं, बाद में फिर इस औस के बारे में बताएंगे। मदीना मुनव्वरा का जो शहर है ये मक्का मुकर्रमा से कोई, इस वक्त अगर आप ड्राइव करें ना गाड़ी पर तो 4 घंटे लगते हैं ड्राइव के अंदर। ठीक है, कितने किलोमीटर है जिसको जाना, कितने माइल्स किलोमीटर दूर है, अराउंड 400 किलोमीटर भी होगा। ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आप अपनी गाड़ी दौड़ाएं तो फिर आपको 4 घंटे लगते हैं। तो बहरहाल तो ये इलाका काफी यानी सरसब्ज इलाका था, यहाँ पे ऐसी जमीन थी कि जिसके अंदर दरख्त उगते हैं, पौधे उगते हैं। ये मक्का मुकर्रमा की तरह की जगह नहीं है, मक्का मुकर्रमा में पहाड़ियां हैं और ऐसी पहाड़ियां हैं कि जिनके ऊपर कुछ उगता नहीं है, कोई सब्जा नहीं उगता, कोई पौधे नहीं उगते। वादिन गैरिजी जरअन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मक्का मुकर्रमा के बारे में फरमाया ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ करी थी कि मैं अपनी औलाद को, इस्माइल अलैहिस्सलाम जो बेटे थे उनको और अपनी बीवी हाजरा को वादे गैरिजी जरअन के अंदर छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है ना, यानी ऐसी वादी के अंदर, ऐसी वैली के अंदर जहाँ पर दरख्त और फूल पौधे वगैरह नहीं उगते हैं, पानी नहीं था वहां पर बिल्कुल भी। ठीक है, तो मदीना मुनव्वरा ऐसा नहीं था, मदीना मुनव्वरा वॉज जैसे कि पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर जो पंजाब की जमीन है ना बहुत जरखेज, वहां पे दो चीज़ आप वही उगाती है। ठीक है, मदीना मुनव्वरा की भी ऐसी जमीन है। ठीक है, तो ये इलाका अरब के अंदर बहुत पुराना इलाका है, जाहिर सी बात है। इसका नाम था यसरब। यसरब ये एक सरदार हुआ करता था किस जमाने में, उसके नाम के ऊपर इस जगह का नाम जो है ना वो यसरब रखा गया था। अच्छा, यहां पर यमन से कुछ लोग आकर के सेटल हो गए थे, ठीक है। यमन में इसकी बड़ी लंबी हिस्ट्री चली जाएगी, लेकिन अभी खाली इतना आपको बताते हैं कि यमन में एक बादशाह होता था तुब्बा हुमैरी, ठीक है। ये बादशाह जो है ना वो अपने पूरे लश्कर के साथ, आर्मी के साथ एक दफा सफर कर रहा था, और ये सफर करते करते मदीना मुनव्वरा पहुंचा, यसरब जो उस जमाने में कहलाता था। यहां पर पहुंचा ना, तो यहां पर पहुंच करके इसके आर्मी के अंदर बिसाइड्स द सोल्जर्स कुछ स्कॉलर्स भी थे। ये लोग अपने स्कॉलर्स को साथ लेकर के चलते थे, ठीक है। तो स्कॉलर्स भी थे, उन स्कॉलर्स ने अपनी बुक्स के अंदर पढ़ा हुआ था कि जो आखिरी नबी आएंगे तो वो एक ऐसे शहर के अंदर जाकर के बसेंगे, अपनी जिंदगी गुजारेंगे कि जहां पर खजूर के बहुत बागात हुआ करेंगे, ठीक है, और वहां पर इस तरह से एक पहाड़ भी होगा और ऐसा भी होगा। ये बहुत सारी निशानियां थी मदीना मुनव्वरा की, इन लोगों को मालूम थी, ठीक है। तो इन्होंने जब यहाँ पे देखा ना कि ये तो जगह बिल्कुल वैसी ही जगह है कि खजूर के बागात हैं और ऐसा एक पहाड़ है जिस बहुत पहाड़, ठीक है, तो वो सारी निशानियां इनको नजर आई। तो इन्होंने अपने बादशाह से कहा कि हमें लगता है कि हमारी किताबों के अंदर जिस शहर के बारे में लिखा हुआ है ना कि जहां पे अल्लाह के आखिरी नबी आएंगे, ये वही शहर है, वी आर सर्टन कि ये वही शहर है, ठीक है। तो तुब्बा हुमैरी जो थे ना, तो उन्होंने वो बिलीवर थे, वो ईमान वाले थे, ठीक है। तो उन्होंने ये बात सुनकर के क्या किया कि उन्होंने एक लेटर लिखा, राइट, खत लिखा कि तुब्बा हुमैरी की तरफ से अल्लाह के आखिरी रसूल के नाम ये खत है, और मैं इसमें लिख रहा हूं कि अगर मेरी आपसे मुलाकात नहीं हुई जब आप दुनिया में आएंगे तो हो सकता है मेरा इंतकाल हो जाए, या हो सकता है मैं ऐसी जगह पर हूं जहां पर कि मैं आपसे आकर के मिल ना सकता हूं, ठीक है। तो अगर मेरी आपसे मुलाकात ना होना तो मैं इस खत में आपको बता रहा हूं कि मैंने आप पर अभी से ईमान ले आया, मैं अभी से आपके ऊपर ईमान ले आया, ठीक है। तो आप मुझे जो है ना वो अपने सहाबा के अंदर शामिल कर लें, आप अपने ईमान वालों में मुझे भी शामिल, ठीक है। ये खत उन्होंने लिखा, और फिर उनके लश्कर के अंदर कुछ लोग थे स्कॉलर्स के, जिन्होंने कहा कि जी हमें तो कंफर्म हो गया है ना कि ये जगह वो है जहां पे अल्लाह के आखिरी नबी ने आना है, अब हम यहां से वापस नहीं जाएंगे, ठीक है, हम तो इधर ही सेटल हो जाएंगे और हम इंतजार करेंगे अल्लाह के आखिरी नबी, ठीक है, बिकॉज दिस इज एन अपॉर्चुनिटी वी डोंट वॉन्ट टू मिस, वी डोंट वॉन्ट टू रिस्क, ठीक है। तुब्बा हुमैरी तो बादशाह था, आप बादशाह हैं भाई, आप जाएंगे, आपने पूरा अपना मुल्क संभालना है, आप किस तरीके से मुल्क छोड़ करके तो नहीं आ सकते, वरना वहां तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा और लोगों की जान जो है खतरे में पड़ जाएगी। तो आपकी जिम्मेदारी है, आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया, खत लिख दिया, लेकिन हमारी तो जिम्मेदारी नहीं, हम तो इधर ही रहेंगे, ठीक है। तो ये लोग जो है ना फिर यसरब के अंदर सेटल डाउन हो गए, ठीक है। ये खत जो है उनमें से एक के पास था, ठीक है। अब टाइम बहुत था, यानी अभी तो नबी अलैहि सलाम के आने का वक्त नहीं हुआ था, तो इस वजह से वक्त गुजरा और ये जो थे ना इनके पास खत था, इनका इंतकाल हो गया, ठीक है। इन्होंने अपने बेटे को वो खत दिया कि भाई अगर तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह के आखिरी रसूल आ जाए तो तुम ये खत जो है उनको दे देना। बेटे का भी इंतकाल हो गया, अल्लाह के नबी नहीं आए, ठीक है ना। ये चलता रहा सिलसिला, हत्ता के आखिर में हजरत अबू जर गफारी हजरत आना, हजरत अबू जर गफारी हजरत आना जो है ना उनके पास ये खत आया, और फिर उनकी जिंदगी में नबी अलैहि सलाम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे, ठीक है। अच्छा, तो अब ये लोग जो यहाँ पे सेटल हो गए थे ना, तो इनके फिर दो ट्राइब्स बन गए, ठीक है। जिस तरह से ट्राइबल सिस्टम होता है कि एक बाप के बेटे जो होते हैं वो एक अपना खानदान बना लेते हैं, दूसरा बेटा जो होता है दूसरा खानदान बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ना दो मेजर ट्राइब्स बन गए, एक का नाम था औस, दूसरे का नाम था खजरज, ठीक है ना। और ये ओरिजिनली यमनीज थे, यानी यमनीज ओरिजिनल अरब्स होते हैं, ठीक है। तो ये ओरिजिनली यमनी अरब से जो कि यहाँ पे आके सेटल डाउन हो गए, औस और खजरज। अब औस और खजरज बड़े बड़े कबीले थे, लेकिन इनके अंदर छोटी छोटी शाखें भी थी, जैसे बनू सलमा है और बहुत सारी दूसरे इस किस्म के, तो वो छोटी छोटी शाखें विद इन औस और खजरज मजीद भी थी, ठीक है। लेकिन मेजर जो थे औस और खजरज, ठीक है। अभी औस और खजरज जो है वो यसरब के अंदर आकर के सेटल हो गए। अच्छा, थोड़े अरसे के बाद जो है ना वो शाम के एरिया से, फलस्तीन शाम वगैरह का जो एरिया है, बैतुल मुकद्दस, ऑल ऑफ दैट, राइट, वहां से फिर यहूदी ज्यूज भी आकर के कुछ यहाँ पे सेटल हो गए। ज्यूज भी क्यों आकर के सेटल हुए, इसलिए कि ज्यूज की किताबों के अंदर भी ये सारी निशानियां लिखी हुई थी कि अल्लाह के आखिरी रसूल ने एक ऐसी जगह पर अरब में आकर के सेटल होना है कि जहां पर ऐसे खजूर के बागात होंगे और वहां पर ये होगा और वहां पर होगा, ठीक है। तो वो जो ज्यूज के ट्राइब्स है ना, वो भी यहाँ पर आकर के सेटल हो गए, लेकिन वो बहुत ज्यादा तादाद में नहीं थे, उनकी तादाद जो थी वो कम थी, ठीक है। वो लोग भी अल्लाह के आखिरी रसूल के इंतजार में आकर के सेटल, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो अरब दो ट्राइब्स थे औसन खजरज, तो अब इन लोगों की आदत थी कि थोड़े दिन के बाद ना इनको पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आप लोगों के अरब दोस्त हैं, अरब बच्चों के साथ दोस्ती है किसी, आपके स्कूल के अंदर होंगे किसी, यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर जो लोग रहते हैं तो अरबी बच्चे आपने देखा होगा अपने स्कूल में, जिसने देखा है उसने देखा, जिसने नहीं देखा वो वैसे कभी देख लेता होगा। अरबी बच्चे जो है ना, वैसे आप लोग भी कुछ कम नहीं है हमें पता है, लेकिन अरबों का मुकाबला आप लोग नहीं कर सकते। तो थोड़े बैठे रहेंगे ना, थोड़ी देर में लड़ना शुरू करेंगे। दे कैन नॉट सिट स्ट्रेट, वो बस उन्होंने, अच्छा आप फुटबॉल कभी खेलने के लिए जाए फुटबॉल ग्राउंड के अंदर, आपको अरब नजर आएंगे, राइट। They are ferocious football players. ऐसा फुटबॉल खेलते हैं और वो गिरते हैं, पड़ते हैं, मारते हैं ना, कुछ नहीं होता उन लोगों, ठीक है। तो ये अरबों के ना, ये अल्लाह ताला ने एक बड़ी जबरदस्त किस्म की एक पावर दी है इनके अंदर। अच्छा, लड़ते भी हैं थोड़ी देर, थोड़े के बाद दोस्ती भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद लड़ना शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद दोस्ती कर लेते हैं, फिर उसके बाद लड़ना शुरू कर देते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, ये चलता रहता है इनके यहाँ, ठीक है। हमने ये अरबों के अंदर एक खास चीज देखी, ये हर एक में नहीं होती, अरबों की खास बात है ये, अफ्रीकन्स में भी वैसे इस तरह की कुछ क्वालिटीज होती हैं, लेकिन वो भी अरबों से, अरबों का मुकाबला नहीं कर सकते। तो अरब जो है ना, उनको कुछ लोग कहते हैं कि दे आर लाइक लायंस, ये शेर है, ठीक है। ये शेर जो है ना, जैसे आपस में दो जो दो, दो, दो मेल लायंस होते हैं ना, बबर शेर, तो अगर दो बबर शेर आ जाए ना एक जगह पर, तो फिर उनमें जो फाइट होती है, आप नेशनल ज्योग्राफी की वीडियोज देखें, दो फाइट होती है दोनों की, बिकॉज दे फाइट फॉर द टेरिटरी। हर लायन की अपनी एक टेरिटरी होती है, वो बाकायदा मार्क करता है अपनी टेरिटरी, ठीक है। और उस पूरी टेरिटरी, उस पूरे एरिया में जो उस लायन का एरिया होता है ना, उस लायन उस एरिया के अंदर वो अपनी स्मेल, अपने एक्सक्रीमेंट के जरिए से, यूरिन के जरिए से एक्चुअली वो अपनी स्मेल फैला देता है, ठीक है। अब वो स्मेल जहां जहां पर है ना, वो उस लायन की टेरिटरी है। अब अगर कोई दूसरा लायन इस टेरिटरी में आ जाए ना, तो फिर ये बादशाह होता है ना इस टेरिटरी का, ये फिर उसके साथ फाइटिंग करता है, और फिर जो ज्यादा ताकतवर होता है वो जीत जाता है, और दूसरे को या तो मार के भगा देता है या मार ही देता है, कतल ही कर देता है, और फिर ये काबिज हो जाता है इसकी टेरिटरी। तो खैर, इस तरह से वो लड़ते रहते हैं, तो अरब भी इस तरीके से लड़ते रहते हैं। तो हमारे एक स्कॉलर थे, वो कहते थे कि ये अरब जो है ना, ये शेर है, शेर, ठीक है। इनसे अगर बचना है ना, ठीक है, इनसे अगर बचना है तो इनका एक ही तरीका है, वो ये है कि इनको सुला दो, इनको सुला दो, ठीक है। अगर ये जागते रहे ना, ये चैन से नहीं बैठे, ठीक है। इनको कोई डोप पिलाओ, उनको कोई इस किस्म की चीज पिलाओ, किसी ऐसे काम के अंदर लगा दो कि सो जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल ये अरबों की एक खास बात है कि लड़ते रहते हैं, तो इस वजह से ये औस और खजरज के जो दो कबीले थे, तुब्बा हुमैरी, हुमैर कबीले का नाम था, तुब्बा जो है वो उस कौम का नाम था, तो तुब्बा हुमैरी उसको कहते हैं। अच्छा, तो ये औस और खजरज थे ना, ये भी वैसे तो एक ही बाप के बेटे और एक ही खानदान के लोग थे, लेकिन जब इनके ट्राइब बड़े हुए तो इन्होंने भी लड़ना शुरू कर दिया आपस, ठीक है। लड़ते रहते, कोई छोटी छोटी सी बात के ऊपर लड़ते रहते थे, बहुत लड़ते थे। हत्ता के इनकी एक आखिरी जो जंग हुई ना मुसलमान होने से पहले, हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, उसका नाम है जंगे बुआस, बुआस, ठीक है। बेकार के अंदर लड़ते रहते थे, जंगे बुआस के अंदर इतना लड़े कि इनके जितने जंगजू किस्म के फाइटर्स थे ना, वो तकरीबन सारे के सारे मर गए लड़ाई के अंदर, ठीक है। और दे वर लाइक एग्जॉस्टेड, लड़ लड़ करके, मर मर करके, एक दूसरे को मार मार करके ना, अब ये जो है ना, वो थक हार करके, यार बचे ही नहीं हमारे लोग लड़ने के लिए, अब इतने थोड़े से रह गए, राइट, अब बहुत हो गया, बस अब कुछ और करना चाहिए, लेट्स डू समथिंग एल्स, ठीक है। तो ये लोग बड़े इस तरीके से इस वक्त परेशान हो चुके थे लड़ लड़ करके। अच्छा, जो यहूदी रहते थे ना वहां पे, थोड़ी तादाद में यहूदियों के ट्राइब्स, उन यहूदियों की क्या खास बात थी कि वो लोग जो थे वो इंतहाई लर्नड किस्म के लोग, पढ़े लिखे लोग थे, स्कॉलर्स थे, ठीक है, जबकि ये अरब जो थे ना, इनके यहाँ फिर पढ़ाई लिखाई वगैरह खत्म हो गई, जब इनके फोर फादर जाके सेटल हुए थे वो तो स्कॉलर्स थे, लेकिन उनकी औलादें जो है ना फिर उतना तालीम वालीम का सिलसिला नहीं रहा, तो वो ये तो अब स्कॉलर्स नहीं रहे थे। यहूदी जो थे ये बहुत बहुत ज्यादा पढ़े लिखे किस्म के लोग थे, ठीक है, तो इनके पढ़े लिखे होने की वजह से, इल्म होने की वजह से ना, ये एक इंटेलेक्चुअली तौर पर ये इन अरबों के ऊपर जो है ना वो अपना इल्म झाड़ते थे, क्या हम पढ़े लिखे हैं, तुम तो जाहिल हो बिल्कुल, तुम्हें तो कुछ आता नहीं है, यू आर इग्नोरेंट, है ना। तो ये ना एक हमेशा इन यहूदियों के इन्फ्लुएंस में रहते थे कि हाँ भाई ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लोगों को बड़ा पता है, हमें तो कुछ पता नहीं है, हम तो बस खजूर उगाते हैं, खजूर काटते हैं, ये करते हैं, इस तरह के काम में आते हैं। अच्छा, इन दोनों ट्राइब्स के दरमियान जो लड़ाई होती थी ना, तो इन लड़ाइयों में इनमें से एक ट्राइब जो खजरज का ट्राइब, खजरज, ठीक है, उन्होंने यहूदियों के साथ एक एग्रीमेंट भी कर लिया था कि जब हमारी औस के साथ लड़ाई होगी ना तो यहूदी हमें सपोर्ट भी करेंगे, मटेरियली सपोर्ट करेंगे और फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। तो यहूदी बेसिकली खजरज के हलीफ थे, यानी उनके उनके साइड पर थे, एलाइज थे उनके, सही है, और औस वाले जो थे ना ये इनका कोई उस वक्त एलाई नहीं था। तो औस कबीला वाले जो थे वो अपने इस खजरज के साथ लड़ाई की वजह से ना They were looking for allies, कि कोई अरब कबीला जो है ना वो हमें भी सपोर्ट करे, जिस तरह से कि यहूदी जो है वो खजरज वालों को सपोर्ट करते हैं। तो ये लोग एलाई सर्च के अंदर जो है ना हज में आए, मिना में आए, ठीक है, कि भाई हम वहां पे आकर के कुरैश से जाकर के बात करते हैं कि तुम हमें सपोर्ट करो, ठीक है, जैसे कि यहूदी खजरज को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये लोग अभी यहाँ पर ठहरे हुए थे मिना के अंदर कि नबी अलैहिस्सलाम सलाम अपनी दावत और तबलीग में जिस तरह से लोगों से मिल रहे थे, तो मिलते मिलते औस के कबीले के ट्राइब के अंदर, औस के कबीले के टेंट के अंदर भी पहुंच गए, ठीक है। तो यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर जाकर के ना एक शख्स था अबुल हुसैर अनस बिन राफे, ठीक है, तो इससे जाकर के मिले नबी अलैहिस्सलाम सलाम और बाकी भी बहुत सारे लोग वहां पे बैठे हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा कि भाई आप लोग यहाँ पर किस मकसद से आए हैं ना, तो बात शुरू करने के लिए। तो अबुल हुसैर की अल्हम्दुलिल्लाह, अबुल हुसैर ने कहा कि हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि खजरज कबीले से लड़ने के लिए हमें भी कोई एलाई चाहिए, कोई मददगार चाहिए, तो कुरैश वालों से जाकर के बात करें कि आप हमारी मदद करें, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने इन लोगों से कहा कि देखो तुम लोग जिस मकसद से यहाँ आए हो ना कि कुरैश को अपनी लड़ाइयों में अपना पार्टनर बनाओ, तो मैं तुम्हें इससे ज्यादा अच्छा मकसद बता सकता हूँ, ठीक है, इससे ज्यादा ज्यादा अच्छा मकसद तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। तो अबुल हुसैर ने कहा कि हाँ जरूर बताएं, आपके पास कौन से ऐसा मकसद है जो कि इससे भी ज्यादा अच्छा मकसद है। तो नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने उससे कहा और सब लोग वहां बैठे हुए थे उनसे कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, ठीक है, अल्लाह ने मुझको इसलिए भेजा है कि बंदों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाऊं, सिर्फ अल्लाह ताला की वो बंदगी करें और किसी शय को अल्लाह ताला के साथ शरीक ना करें, और अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर एक किताब भी नाजिल फरमाई है, अल कुरान। और फिर नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने कुरान मजीद की कुछ आयात तिलावत करके लोगों को सुनाई और उनके सामने इस्लाम पेश किया कि भाई ये दीन इस्लाम है, इसके अंदर ऐसा ऐसा होता है। वहां पर एक शख्स बैठे हुए थे औस कबीले के ही, अयास बिन मुआस, ठीक है। तो इन्होंने जब ये आयात सुनी ना, तो इन्होंने अपने कौम वालों से कहा, यानी औस वालों से कहा कि ए कौम, अल्लाह की कसम, जिस काम के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं ना, ये वाला काम उससे ज्यादा बेहतर है कि हम इनकी बात मान लें और हम मुसलमान हो जाएं, ठीक है। तो अबुल हुसैर जो बैठा हुआ था ना, उनका जो उस वक्त का लीडर था वहां पर, तो उसने क्या किया, उसने जमीन से मिट्टी उठाई हाथ में और उठा करके ना अयास बिन मुआस के मुंह के ऊपर फेंकी। ये लोग क्या करते थे, जब इनको किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आता था ना, तो कभी कभी ये मिट्टी उठा करके उसके मुंह के ऊपर फेंकते, ठीक है। तो इसने अयास बिन मुआस के मुंह के ऊपर ये मिट्टी फेंकी और कहा कि नहीं नहीं, हम इस काम के लिए कोई नहीं आए, हम तो अपना काम लेकर के आए कि कुरैश से बात करें कि तुम हमारी मदद करो, हम वही काम करके जाएंगे, यहां से ये काम हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अयास बिन मुआस जो था ना वो खामोश हो गए उस वक्त, और फिर ये लोग, इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, इन्होंने फिर कुरैश से बात करी, कुरैश ने इनको ठेंगा दिखा दिया, हम तुम्हारी कोई मदद वदद नहीं करते, जाओ जहां से आए, ठीक है। तो ये नाकाम और नामुराद जो है ना ये वापस यसरफ चले गए। लेकिन वहां पहुंचने के थोड़े दिन के बाद अयास बिन मुआज जो थे ना उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल से पहले वो कलमा भी पढ़ रहे थे, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ रहे थे। तो जितने लोग वहां पे मौजूद थे उन्होंने बाद में बताया कि हमें यकीन है कि वो मुसलमान होकर के मरे। ठीक है, देखिए अल्लाह ताला ने कैसी उनकी मदद फरमाई, उनको इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाई, क्योंकि उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस पर हिमायत करी थी। ठीक है, तो अब ये तो एक छोटा सा वाकया था कबीला औस के बारे में कि ये लोग आए और फिर वापस चले गए, इनमें से किसी ने कबूल नहीं किया इस्लाम को सवाए अयास बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है ना वो इन लोगों से बात करने के बाद नेक्स्ट टेंट के अंदर गए थे। वो जो टेंट था ना वो टेंट था कबीला खजरज वालों का। ठीक है, और वहां पर कबीला खजरज के 6 नौजवान मौजूद थे, 6 बिल्कुल यूथ वाले यंग लोग थे। सही है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उनसे जो बात करी ना, तो विल ही काउंट एज अ सहाबा? यस डेफिनेटली ही विल बी काउंटेड एज अ सहाबी। ठीक है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वसल्लम की मौजूदगी में उन्होंने सलाम कबूल किया। अच्छा, तो नेक्स्ट टेंट के अंदर ये खजरज के लोग थे, 6 लोग मौजूद थे वहां पर। तो नबी अलैहिस्सलातु वसल्लम ने उनसे जाकर के जब बात करी ना, तो इन खजरज के 6 लोगों ने आपस में ना जरा सरगोशी में बात करी कि हमारे जो जो शहर यसरब के अंदर यहूदी रहते हैं ना, तो वो हमें हर वक्त बताते रहते हैं कि देखो तुम लोग जो है ना वो हमारी बात मानो और हमारी इज्जत करो और हमसे लड़ाई बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि हम तो अल्लाह ताला के बड़े चोजन किस्म के लोग हैं, बनी इसराइल हैं हम तो। ठीक है, हमारी फैमिली के अंदर तो बड़े अंबिया आए हैं। ठीक है, तो तुम लोग अगर हमारे साथ लड़ाई करोगे ना या हमारे साथ कुछ गलत मामला करोगे ना, तो फिक्र ना करो, थोड़े दिन के बाद ना अल्लाह के आखिरी नबी भी आने वाले हैं। ठीक है, और इन लोगों का ख्याल ये था कि जो आखिरी नबी आने वाले हैं वो इन्हीं की फैमिली में से होंगे, बनी इसराइल में से ही होंगे। ठीक है, तो कहते थे ये औस और खजरज वालों को कि जब अल्लाह के नबी आएंगे ना, तो फिर तुम लोग तो हो बुतपरस्त, बुतों की पूजा करते हो, और हम लोग तो हैं अहले किताब, तो हम ना अल्लाह के नबी के साथ मिल करके फिर तुम्हारी पिटाई करेंगे और तुम्हें बिल्कुल उसी तरीके से खत्म कर देंगे कि जैसे आद और कौम इरम और कौम आद खत्म हो गई थी ना, तबाह बर्बाद हो गई थी, तुम्हें भी इसी तरीके से तबाह बर्बाद कर देंगे। ठीक है, तो यहूदी ना ये इस तरह की बातें हर वक्त इन लोगों को कहते रहते थे, औस और खजरज वालों। ठीक है, तो खजरज वालों ने जब नबी अलैहि सलाम से ये बातें सुनी ना, तो उन्होंने कहा कि हमें तो लगता है कि ये वही अल्लाह के आखिरी नबी है जिसका कि यहूद हमें आप बताते रहते हैं और हमें डराते रहते हैं कि जब ये आ जाएंगे तो मिलकर के हमारे साथ तो लड़ाई करेंगे और हमें मार देंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि हमें यानी बिल्कुल इतना तो यकीन हो गया कि ये वही है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम फौरन से इनकी बात मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि ये फिर अगर हमने इनकी बात ना मानी और ये फिर यहूदियों के पास चले गए तो यहूदी इनकी बात मान लेंगे और यहूदी फिर इसके अंदर आगे निकल जाएंगे, हम आगे निकल जाते हैं इसका। ठीक है, तो इन्होंने ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को मान लिया। ठीक है, अच्छा एक और भी मजे की बात ये थी कि ये जो कबीला औस के लोग जब वापस पहुंचे ना, तो इन्होंने फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को मान लिया। फिर उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक और बड़ी जबरदस्त बात करी कि अगर आप इजाजत दें तो हम जब यहां से वापस यसरब जाएंगे ना, तो हम यहूदियों को भी दीन की दावत दें, आपके दीन का यहूदियों को भी बताएं, अगर वो भी मुसलमान हो गए ना तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपकी इतनी इज्जत होगी मदीना मुनव्वरा, आपकी यानी यसरब के अंदर इतनी इज्जत होगी कि बस उसके कोई हिसाब ही नहीं। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको इजाजत दी कि हाँ तुम लोग वापस जाकर यहूदियों से बात कर लेना जैसे तुम्हारी मर्जी हो। ठीक है, तो देखिए इससे क्या पता चलता है कि ये लोग ना सिर्फ ये कि खुद दीन को कबूल करने वाले थे बल्कि इनके दिल के अंदर दूसरों की भी फिक्र थी। ठीक है, कि यहूदियों को भी हम, हालांकि यहूदी जो थे वो कोई इनके बहुत ज्यादा हेल्पर्स और यानी एलाइज तो थे लेकिन कोई बहुत ज्यादा फ्रेंड नहीं थे इनके ना, लेकिन इन्होंने कहा कि यहूदियों को भी हम दीन की दावत देते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इनको इजाजत भी दे दी। ठीक है, अब ये जो 6 लोग थे ना, ये लोग यहाँ से जब वापस मदीना मुनव्वरा गए तो वहां जाकर के फिर ना इन्होंने हर एक से बात करनी शुरू, ये जहां जाकर के बैठते थे शाम को कावा वावा पीने के लिए अरब बैठते ही हैं सारे। ठीक है, तो जहां बैठते थे ना वहां पे नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताते थे कि एक शख्स हैं जो कि वहां पर आए हुए हैं, वो अल्लाह के नबी अपने आप को कहते हैं और उनकी दावत इतनी अच्छी है और उनके ऊपर जो कलाम नाजिल हुआ है वो इतना अच्छा है। ठीक है, तो इस तरीके से ना इन्होंने मदीना मुनव्वरा में वर्ड ऑफ माउथ के जरिए से नबी अलैहिस्सलाम के बारे में खबर फैला दी, ठीक है ना। और इनकी बात को सुन करके ना यसरब के बहुत सारे लोग मुसलमान हो भी गए, इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया, ठीक है। ये जो छह लोग थे ना, इनके नाम भी लिखे हुए हैं, इनमें एक थे हजरत असद बिन जरारा रजी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। औफ बिन अल हारिस एक थे, राफे बिन मालिक बिन अजलान थे, उकबा बिन आमिर और जाबिर बिन अब्दुल्ला बिन रियाब रजी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है, क्योंकि सारे सहाबी रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में मुसलमान हो गए थे। तो ये छह लोग थे, इन छह लोगों ने जाकर के फिर मदीना मुनव्वरा में ना साइलेंटली लोगों को बताना शुरू किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और काफी सारे लोग मुसलमान हो गए, ठीक है। ये जो वाकया पेश आया, ये कौन सा साल चल रहा था, नबूवत का कौन सा साल था? ये वाला वाकया नबूवत के 11वीं साल में, ठीक है, 10वीं साल में वो मिराज का वाकया हुआ, शादी का मामला हुआ था, ठीक है। ये था नबूवत का 11वां साल, यानी 11 साल गुजर चुके थे वो गारे हिरा वाले वाकये को, ठीक है। अब एक साल पूरा गुजर गया और नबूवत का 12वां साल आ गया, ठीक है। अब 12वें साल के अंदर फिर जब हज का मौका आया ना, तो नबी तो यसरब से अब की बार 12 लोग आए और आकर के उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12 लोग आए, लोग तो और भी आए, ठीक है, लेकिन बाकी जो लोग थे वो नॉन मुस्लिम थे, काफिर थे, वो नबी अलैहिस्सलाम से मिलने की नीयत से नहीं आए थे। 12 लोग नबी अलैहिस्सलाम से मिलने की नीयत भी बना करके आए, ठीक है। इन 12 में से 5 कौन थे? वही जो के पिछले साल मुसलमान हो चुके थे, ठीक है ना, एक दोबारा नहीं आ सके थे, 5 रिटर्न, ठीक है। तो 5 तो पुराने लोग थे जो मुसलमान पहले से हो चुके थे, और 7 जो थे ना वो नए लोग थे जिन्होंने अभी आकर के नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करनी थी, ठीक है। अब ये जो टोटल 12 लोग थे, इनमें असद बिन जरारा रजी अल्लाह ताला अन्हु फिर से आए, और औफ बिन अल हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु ये भी फिर से आए, राफे बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी फिर से आए, उकबा बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो 5 थे जो कि पिछले साल आ चुके थे, ठीक है। और इनके अलावा जो 7 थे ना, जो कि अब नए लोग थे, वो थे मुआज बिन अल हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु, ज़कवान बिन अब्द कैस, उबादा बिन सामित, अबुल हैस मालिक और उवैम बिन साइदा, यजीद बिन सालबा, अब्बास बिन उबादा बिन नज़रा। अब जाहिर है ये ना तो मुझे याद है ये सारे नाम, ना आपको याद रहेंगे, किताब के अंदर लिखे हुए, जब कभी किसी को जरूरत पड़े तो किताब को उठा करके हमें देख लेंगे हम, ठीक है। तो आई डोंट वांट यू टू राइट ऑल ऑफ देम, बुक्स ऑलरेडी हैव देम रिटन डाउन, ठीक है, और उनको याद आप कर भी नहीं सकेंगे, ना करने का भी कोई फायदा है, लेकिन इनका नाम पढ़ लेना, नबी अलैहिस्सलाम सलाम के सहाबी थे, इनके नाम पढ़ने से इंशाल्लाह फायदा होगा, बरकत होती है हमारे अकाबरीन के साथ, उनके नाम के अंदर भी बरकत होती है, तो हमने इनका नाम पढ़ लिया। तो ये टोटल 12 लोग थे, ठीक है। अब ये 12 लोग जो नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करी ना इन्होंने आकर के, तो ये मुलाकात कहाँ करी? मीना के अंदर, ठीक है। मीना कौन सी एरिया, कौन सी जगह है? बिल्कुल मक्का मुकरमा से अटैच्ड है ये जगह, ठीक है। और यहाँ पर जब आप हज के लिए जाते हैं तो मीना के अंदर फिर आप कयाम करते हैं, पूरा जो टेंट सिटी होता है, कभी आपने अगर गाड़ी से भी गुजरे हो तो व्हाइट टेंट्स लगे हुए होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ देम, ठीक है। अब ये मीना के अंदर ना एक तो वो जगह है जहां पर के लोग ठहरते हैं, ठीक है। मीना के एक एंड पर टूवर्ड्स मक्का मुकरमा जब आप आते हैं ना, तो वहां पर एक और साइट है बड़ी इंपॉर्टेंट, विच इज पार्ट ऑफ मीना, लेकिन वहां पर लोग ठहरते नहीं है। वो कौन सी जगह है किसी को याद? अब तो हमें याद रखनी पड़ेगी, पता नहीं आज कल होगा, जहां पे शैतान को कंकनियां मारते हैं, ठीक है ना, वहां पे 3 शैतान है ना, एक छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है, रमी करते हैं वहां पर, रमी अल जिमार भी उसको कहते हैं, ठीक है। तो जहां पर रमी अल जिमार की जगह है ना, वो जो 3 शैतानों की जगह है, तो उन 3 शैतानों की जगह से फिर आप मजीद अगर मक्का मुकरमा की डायरेक्शन में आगे बढ़े ना, तो राइट साइड के ऊपर, यानी यू आर वॉकिंग फ्रॉम मीना टूवर्ड्स रमी अल जिमार एंड देन फर्दर टूवर्ड्स मक्का मुकरमा, ठीक है, तो आपके राइट साइड के ऊपर एक मस्जिद नजर आएगी, बहुत पुराने जमाने की मस्जिद है, पत्थर की बनी हुई, ठीक है। उसको ना अब इन्होंने वो फेंसेस बना करके उसको कवर कर दिया, अब आप उसके अंदर नहीं जा सकते। वो जो मस्जिद है ना, उसका नाम है मस्जिद बैया, मस्जिद उकबा भी उसको कहते हैं, ठीक है। ये वो मुकाम है कि उस जगह के ऊपर इन 12 लोगों ने جو یثرب سے آئے ہوئے تھے نبی علیہ السلام سے ملاقات کری اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر بیعت اسلام کری. اسلام کی بیعت. اسلام کی بیعت کا مطلب کیا؟ کہ نبی علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور ہم آپ کی بات مان کر کے اب زندگی گزاریں کیونکہ آپ کو ہم نے اللہ کا رسول مان لیا ہے. Then whatever you say, we will consider that as Allah's commands. ہے نا؟ تو یہ انہوں نے وعدہ کر لیا نبی علیہ السلام سے. اس وعدہ کرنے کو بیعت کہتے ہیں. اور چونکہ اس جگہ کا نام عقبہ تھا تو اس کا نام ہو گیا بیعت عقبہ. بعد میں پھر مسلمانوں نے یہاں پر ایک مسجد بھی بنا دی کیونکہ اتنی بلیسڈ جگہ تھی. نبی علیہ السلام بھی یہاں پر تھے اور صحابہ کرام بھی یہاں پر تھے. تو ایسی جتنی بھی جگہ ہوتی ہیں نا تو وہاں پر ہمیشہ ایمان والے مسجد بنا دیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ایک واقعہ ہم نے مسجد بنانے کا ایمان والوں کا پہلے بھی پڑھا تھا. کسی کو یاد ہے؟ نبی علیہ السلام کے زمانے سے بہت پہلے کا زمانہ, وہاں پر بھی ایمان والے تھے اور لوگوں نے وہاں مسجد بنا دی. کسی کو یاد ہے کون سا واقعہ؟ اصحاب کہف کا واقعہ. ٹھیک ہے؟ اصحاب کہف بھی ایمان والے تھے. تو جب لوگوں کو بعد میں پتا چلا کہ اچھا یہاں پہ تو ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے وہاں پر بھی مسجد بنا دی. تو مسجد بنانے کا جو ٹریڈیشن ہے نا یہ ہمیشہ سے چلتا رہا ہے. ٹھیک ہے؟ Were the other seven people Muslim? شیطان کو پتھر مارنے والی جگہ اصحاب کہف. جی جزاک اللہ. سارے جواب یہاں سے آ رہے ہیں. ہاں وہ تو بعد میں آئے گی ساری کہانی. بہت زیادہ شرارتیں کریں. اچھا تو یہ بیعت عقبہ ہو گئی. اس میں نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر یہ 12 لوگ مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے؟ اب جب یہ 12 لوگ واپس یثرب جا رہے تھے نا. جی نہیں, یہودیوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ نبی آخری جو ہے ان کی فیملی. اچھا تو اب جب یہ واپس جانے لگے تو ان لوگوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ نا کچھ ٹیچرز بھیج دیجئے جو کہ واپس جا کر کے پھر ہمیں قرآن سکھائیں, ہمیں نماز سکھائیں, دوسری جو امپورٹنٹ باتیں دین کی وہ ساری چیزیں سکھائیں. تو نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ پھر دو صحابہ کو کر دیا. ٹھیک ہے؟ وہ دو صحابی کون تھے؟ ایک تو تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نابینا صحابی, یہ وہی صحابی ہیں کہ جن کا واقعہ سورہ عبسا و تولا کے اندر ہے نا. کہ نبی علیہ السلام سے انہوں نے آ کے سوال پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں کری تھی. تو اللہ تعالیٰ نے عبسا و تولا ان جاءہ الاعمى, ہے نا, کہ جب آپ کے پاس ایک نابینا آئے تھے تو آپ نے جو ہے وہ ان کی بات نہیں سنی. یہ وہی والے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے والد کا نام نہیں پتا تو ان کا نام جو ہے نا ان کی امی کے نام سے ابن ام مکتوم کے بیٹے عبداللہ. ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑے یونیک صحابی ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم, کیونکہ ان کے تو باپ تھے ہی نہیں. ٹھیک ہے؟ لیکن ان کے تو باپ تھے لیکن مشہور جو ہیں اپنی ماں کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ تھے اور دوسرے تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح ہے؟ تو ان دونوں کو ان لوگوں کے ساتھ یثرب روانہ کر دیا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کیا ہی بات ہے, زبردست باتیں پھر آگے ہم پڑھیں گے. ان کی شہادت پھر ہوئی تھی غزوہ احد کے اندر. ٹھیک؟ وہاں جا کر کے پیش ہوئی ہے. نہیں, ان کا ایسا تو کہیں نہیں پڑا کہ یہ بعد میں نابینا ہے. یہ تو پہلے سے نابینا ہی. ہاں, اس بار سوکی نابینا. کوئی ایسا ذکر نہیں ہے کہ جی ابھی یہ نابینا نہیں تو بعد میں جا کے نابینا ہو گئے, ایسا تو ہم نے کہیں نہیں پڑھا. بہرحال یہ دو صحابی ان 12 لوگوں کے ساتھ یثرب پہنچے اور یثرب میں پہنچ کر کے نا انہوں نے کس گھر کے اندر قیام کیا؟ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا, جو کہ پچھلے سال جو 6 لوگ تھے ان میں اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے. پھر اس کے بعد جو 12 لوگ آئے ان میں بھی اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے. ٹھیک ہے؟ تو ان کے گھر کے اوپر پھر حضرت مصعب بن عمیر الدران نے بھی قیام کیا آ کر کے. ٹھیک ہے؟ اب اسد بن زرارہ الدران جو ہے وہ پھر مصعب بن عمیر الدران کو لے کر کے نا پھر لوگوں کے گھروں میں جاتے, وہاں پہ لوگوں سے بات کرتے اسلام کے بارے میں. بالکل جیسے تبلیغی جماعت والے گھر جاتے ہیں, نوک کرتے ہیں, بھی آپ باہر نکلیں, پھر کچھ دین کی بات کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے یہ لوگ گھر گھر جا کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کر. ٹھیک ہے؟ تو اسد بن زرارہ الدران جو ہے وہ ان کے ہیلپر, ان کے انصار, ان کے مددگار کے طور پر ان کے ساتھ ساتھ جاتے تھے. ٹھیک ہے؟ اچھا यसरब के अंदर एक शख्स थे जिनका नाम था उसैद बिन हुगैर रजी अल्लाह तआला। ठीक है, अभी ये मुसलमान नहीं हुए थे तो इस वजह से बाद में होता है। तो उसैद बिन हुगैर जो थे ना, ये बड़े जंगजू किस्म के फाइटर किस्म के आदमी थे। जब इनको पता चला ना कि यसरब के अंदर इतने सारे लोग जो हैं वो अपना पुराना दीन छोड़ करके एक नया दीन कबूल कर रहे हैं, और ये असद बिन जरारा रज़ी अल्लाह तआला जो है ये उनकी मदद कर रहे हैं, तो ये तो तलवार लेकर के ना पहुंच गए असद बिन जरारा रज़ी अल्लाह तआला के घर पे, और वहां पे जाकर के कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अगर मेरे कजन ना होते ना तो मैं तो तुम्हें कत्ल कर देता। ये तो जो तुम हरकतें कर रहे हो है ना, तीन लोगों का खराब कर रहे हो और लोगों को छुड़वा रहे हो, और है ना तुमने लोगों को अपने घर में पना दी हुई है और ये लोग हमारे शहर में आकर के नई नई बातें कर रहे हैं। वहां पे हजरत मुसअब बिन उमैर भी बैठे हुए थे, उन्होंने असद बिन जरारा उन्होंने ये क्या नाम था इनका उसैद बिन हुज़ैर से कहा कि भाई आप इतना गुस्सा क्यों होते हैं, आप ऐसा करें कि आप मेरी बात बस सुन लें। ठीक है, मेरी बात सुनने के बाद अगर आपको मेरी बात पसंद आ जाए ना तो फिर आप मान लीजिएगा, और अगर आपको मेरी बात पसंद ना आए तो फिर आपकी जो जो मर्जी आए आप कीजिएगा। ठीक है, तो उसैद ने कहा कि हाँ भाई बात तो तुमने ठीक कही, मैं बात सुनने में क्या हर्ज है, मैं बात तुम्हारी सुन लेता हूँ। ठीक है, तो मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर इनके सामने दीन इस्लाम की दावत पेश करी और इनको कुरान मजीद की कुछ आयात तिलावत करके सुनाई। ठीक है, तो उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब कुरान मजीद की तिलावत सुनी ना तो उनका तो दिल ही बदल गया ना। सही है, और उन्होंने कहा कि जी ये तो बड़ा जबरदस्त किस्म का कलाम है। ठीक है, तो कहने लगे कि मा अहसनु हाजा कलाम वो अजमल हो, क्या खूबसूरत कलाम आपने सुना है, कितना प्यारा कलाम है जो कि आपने सुना है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि ये जो दीन जो तुम पेश करो ना लोगों को, इस दीन में कैसे दाखिल होते हैं। तो मुसअब बिन उमैर ने बताया कि भाई इसके लिए जो है ना आप अपने जिस्म और कपड़ों को पाक कर लीजिए, यानी अगर कपड़ों के ऊपर कोई नजासत वगैरह लगी हुई है तो उसको आप धो लीजिए, और आप गुसल कर लीजिए, और गुसल करने के बाद फिर कलमा शहादत पढ़िए, और उसके बाद मैं आपको इबादत वगैरह का बता दूंगा। तो उसी वक्त उठे, उसी वक्त उन्होंने जो है ना अपने कपड़ों को भी धोया, गुसल भी किया, और कलमा शहादत पढ़ करके फिर उन्होंने दौर का नमाज भी पढ़ ली और मुसलमान। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने मुसअब बिन उमैर से कहा कि भाई मैं तो हो गया हूँ मुसलमान, लेकिन एक और शख्स है हमारे कबीले के, ठीक है, जिनका नाम है साद बिन मुआस। ठीक है ना, ये बड़े पावरफुल इंसान है, आप बड़ा इनका रोब है, बड़े लोग इनकी इज्जत करते हैं और ये इनकी बात मानते हैं ना, अगर ये मुसलमान हो गए ना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ फिर हमारे कबीले का हर शख्स मुसलमान होता है। ठीक है, साद बिन मुआस। तो मुसअब ने कहा अच्छा चलो ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ। तो जब ये वहां पहुंचे ना साद बिन मुआज के घर पे, तो साद बिन मुआज को भी पता था कि ये क्या चल रहा है इस वक्त मदीना मुनव्वरा में, कि हमारे शहर में ये नए लोग आ गए हैं और उन्होंने लोगों को दीन से हटाना शुरू कर दिया। असल में साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु ही ने उसैद बिन हुज़ैर को भेजा था, है ना, कि जाकर के इन लोगों से निबट करके आओ, उनको मार वार करके आओ। ठीक है, तो अब जब इन्होंने देखा उसैद बिन हुज़ैर को वापस आते हुए ना, तो शक्ल देख करके इनको अंदाजा हो गया कि बदले बदले सरकार नजर आते हैं ये तो जब गए जो थे ये तो किसी और शक्ल को लेके गए थे, जो वापस आ रहे हैं ना तो अब तो इनकी शक्ल के ऊपर कुछ और बच रहा है। ठीक है, तो वो पहचान गए कि कुछ गड़बड़ हो गई है। जब ये करीब आए ना तो इन्होंने उसैद से कहा माफ आलता, क्या क्या तुमने जाकर के वहां पर, खूब गुस्से में। तो उसैद ने कहा कि भाई मैंने उनकी जो बात सुनी है तो मैंने तो उसके अंदर कोई बुराई नहीं पाई। तो साद बिन मुआज को उल्टा गुस्सा आ गया। ठीक है, अच्छा मुसअब अभी साथ नहीं आए थे, बस उसैद आए थे साथ से बात करने के लिए। तो साद बिन मुआज को गुस्सा आ गया बात सुन करके, और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और खुद पहुंच गए असद बिन जरारा के पास। ठीक है, जिनके पास जो है मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु ठहरे हुए थे, तो वहां जाकर के फिर साद ने भी इसी तरीके से बात करी कि अगर तुम मेरे कजन ना होते, मेरे रिश्तेदार ना होते ना, तो मैं तो तुम्हें अभी तलवार से तुम्हारा काम खत्म कर देता, तुम ही इन लोगों को ना हमारी कौम को बहकाने के लिए लेकर आए हो। ठीक है, तो वहां पर फिर दोबारा मुसअब ने यही कहा कि ए साद क्या ये हो सकता है कि आप थोड़ी देर बैठ करके मेरी बात सुन लें, है ना, तो अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो बहुत अच्छी बात है। ये साइन आउट हो गया, तो अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो फिर ठीक है, और अगर ना पसंद आए तो फिर जो मर्जी आए आप कीजिएगा। ठीक है ना, क्या इनको एतमाद था, भरोसा था अपनी दावत के ऊपर और इस्लाम के ऊपर। ठीक है, तो साद ने कहा ये ठीक है मैं तुम्हारी बात सुन लेता हूँ। तो मुसअब रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی، سنتے ہی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی رنگ بدل گیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی اس دین میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے، تو مسلمان کو بھی بتایا کہ بھائی آپ غسل کر لیں، اپنے کپڑوں کو پاک کر لیں، اور پھر کلمہ شہادت پڑھ لیں، اور پھر دو رکعت جو ہے نماز ادا کر لیے گا اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے. تو سعد رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اسی وقت اٹھے، غسل کیا، کلمہ شہادت پڑھا اور دو رکعت نماز ادا کری، اور پھر وہاں سے نا اٹھ کر کے ٹھیک اپنے قوم کے پاس پہنچے واپس، اور وہاں پہ جا کر کے جیسے لوگ بلایا کرتے تھے کہ سارے لوگ جمع ہو جاؤ، آ جاؤ سارے لوگ، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کال کیا اور ان کی قوم کے سارے لوگ جو ہے نا وہ جمع ہو گئے. اب جب لوگ سارے جمع ہو گئے نا، تو سعد رضی اللہ عنہ نے ان سب سے خطاب کیا اور یہ کہا کہ تم لوگوں کا میرے بارے میں کیا خیال ہے، مجھے کہ تم کیسا سمجھتے ہو. تو سب نے کہا کہ آپ تو ہمارے سردار ہیں اور بڑے با اعتبار ہیں، ہم آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، اور آپ کا مشورہ جو ہوتا ہے نا وہ سب سے اچھا مشورہ ہوتا ہے، ہم آپ کے مشورے کے اوپر عمل کرتے ہیں. تو سعد رضی اللہ عنہ نے پہلے ان سے یہ ساری باتیں بلوا لی کہ ہم آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ کے مشورے پر عمل کرتے ہیں، آپ سب سے اچھے ہیں ہم میں سے. جب انہوں نے یہ ساری باتیں بول لی نا، تو اب سعد نے کیا فرمایا، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تم سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لے آؤ، ٹھیک ہے. اب سارے لوگ انہوں نے یار یہ کیا ہو گیا یہ کیا بات ہوئی، لیکن لوگوں نے آپس میں بات کرنی شروع کری، اور جیسا کہ اسید نے کہا تھا کہ سعد کی بات لوگ مانتے ہیں، تو شام تک جو ہے نا کوئی گھر ایسا نہیں تھا اس قبیلے کا کہ جس کے لوگ مسلمان نہ ہو سوائے چند ایک کچھ. اچھا ایک بندہ رہ گیا، صرف ایک بندہ رہ گیا، سارے لوگ مسلمان، ٹھیک ہے، قبیلہ اوس کے. تو اس ایک بندے کا نام جو ہے وہ اسیرم تھا، ایکچولی عمر بن ثابت اس کا نام تھا، اور لوگ اس کو اسیرم کہا کرتے تھے، یہ اس کا ٹائٹل تھا، ٹھیک ہے. یہ اسلام لانے سے رہ گیا، اور یہ کب مسلمان ہوا، یہ مسلمان ہوا جنگ احد کے دن، ٹھیک ہے، جنگ احد کے دن. اور اس کے مسلمان لانے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب تھا کہ یہ ٹھیک جب لڑائی چل رہی تھی نا مکہ مکرمہ کے کافروں میں اور مدینہ منورہ کے مسلمانوں میں، تو یہ اس وقت نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے کلمہ پڑھ، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھتے ہی جو ہے نا یہ میدان جنگ میں کود گئے، اور وہاں پہ قتلا ثم قتلا لوگوں کو مارا دشمنوں کو، حتیٰ کہ خود شہید ہو گئے، ٹھیک ہے نا. ایک نماز بھی نہیں پڑھی، کچھ بھی اور نہیں کیا. اور نبی علیہ السلام نے پھر لوگوں کو بتایا کہ اسیرم جنت، ٹھیک ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پھر بعد میں لوگوں سے کہا کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ مجھے کسی ایسے شخص کا بتاؤ، اگر تم کسی ایسے شخص کو جانتے ہو کہ جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی لیکن وہ جنت میں پہنچ گیا. تو لوگ کہتے تھے نہیں ہمیں تو ایسے کسی شخص کا نہیں پتا. تو بتاتے کہ اسیرم ایسا شخص ہے جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی لیکن وہ جنت کے اندر چلا گیا، ٹھیک ہے. قبیلہ بنی عبد الاشحل کا شخص اسیرم، ٹھیک ہے. تو اب جو ہے نا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے اور اسید بن خزیر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے. تو اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے. اور اس کے بعد پھر ہم اگلی کلاس میں جو پڑھیں گے تو یہ کہ پھر ایک سال گزر گیا، اور اس کے بعد پھر مدینہ منورہ سے لوگ دوبارہ مکہ مکرمہ گئے نبی علیہ السلام سے ملاقات کے لیے. اچھا یہ جو پہلی یہ جو بیعت ہوئی نا، بارہ حضرات نے جو بیعت کری، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولی، پہلی بیعت جو کہ عقبہ کے مقام پر ہوئی تھی. اس کے بعد ایک اور بھی بیعت ہوئی تھی، بیعت عقبہ ثانی، یعنی دوسری بیعت عقبہ. وہ پھر ہم انشاءاللہ کی کلاس کے اندر پڑھیں گے. کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو کسی بھی کلاس کے اندر تو پوچھ لیں. ہاں سعد کے کزن یہ بھی تھے، اسید جو تھے نا یہ کسی اور بک میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسید جو ہے وہ سعد کے کزن تھے، اور اسد بن زرارہ یہ بھی سعد کے کزن تھے. سعد نے جا کر کے کہا نا اسد بن زرارہ تھا کہ اگر تم میرے خالد کا کزن نہ ہوتے تو میں تو تمہیں قتل ہی کر دیتا. تو اسید بھی ان کے کزن تھے، یہ ہم نے کہیں اور پڑھا تھا. اور یہاں جو لکھا ہوا وہ یہ کہ سعد اسد کے قدم اسد بن زرارہ. कजन का मतलब खाली ये नहीं होता फर्स्ट कजन, ठीक है ना, सेकंड कजन को भी ये लोग कजन ही कहते थे, ताकि थोड़ा सा और भी, बिकॉज ये ट्राइब है ना, एक ही फादर है, उनके बेटे फिर उनके बेटे फिर उनके बेटे, तो इस तरीके से ना ये लोग एक दूसरे को अपना कजन ही क्या करते हैं, यानी मैं तो मेरी खाला के बेटे हो तो मेरी फलाने के बेटे हो तो मेरी फलाने बेटे, हालांकि डायरेक्टली सगा सगी खाला का बेटा होना जरूरी नहीं होता, सब एक ही फैमिली होती थी, लार्जर फैमिली थी। साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हाँ तक मुझे याद पड़ता है, दो थे ना साद बिन बादर रज़ी अल्लाह अन्हु थे, सादैन जिनको कहते हैं, तो में से एक ही थे साद बिन मुआज़, और गालिबन ये वही वाले थे जो फिर जंग खंदक के अंदर जो शहीद हुए थे। चलिए क्लास खत्म करते हैं, वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह। Thank you.